प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। फेडरल सरकार ने वकील और व्यवसायी जिलियन सेगल को ऑस्ट्रेलिया का पहला एंटी सेमिटिज्म एनवॉय नियुक्त किया है। ऐसी उम्मीद थी कि इस पद की घोषणा इस्लामोफोबिया एनवॉय के साथ की जाएगी, जिसके बारे में सरकार जल्द ही घोषणा करेगी। सुश्री सेगल सरकार को यहूदी विरोधी भावना और सामाजिक एकजुटता से संबंधित मुद्दों पर सलाह देंगी और इस संदर्भ में समझ बढ़ाने के लिए समुदाय के साथ जुड़ेंगी। हालांकि ज्यूविश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सुश्री जूलियन की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की है। फेडरल सरकार ने पहली बार एक एडवाइजरी प्रकाशित की है, जिसमें कि दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के लिए चीन की ओर से काम करने वाले एक ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट का कहना है कि कुख्यात APT-40 ग्रुप ऑस्ट्रेलियाई सरकार और निजी क्षेत्र के नेटवर्क को निशाना बना रहा था। एक प्रमुख चैरिटी का कहना है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण लाखों ऑस्ट्रेलियाई लोग बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट्स को खरीदने में असमर्थ हो गए हैं। चैरिटी गुड 360 ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उसके सर्वेक्षण से पता चलता है कि 7 में से 1 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने हाल ही में आवश्यक व्यक्तिगत स्वच्छता या घरेलू सफाई उत्पादों को खरीदना छोड़ दिया है, क्योंकि वे उन्हें खरीदने में सक्षम ही नहीं हैं। ये उन्हें हाइजीन पॉवर्टी नामक स्थिति में डाल देता है। चैरिटी का कहना है कि उसके शोध से ये भी पता चलता है कि हाइजीन पॉवर्टी का अनुभव करने वाले 10 लोगों को परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ट्रेजरर जिम चार्मर्स का कहना है कि प्रशांत द्वीप के देशों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जोड़े रखना ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकता है। सरकार ने इस क्षेत्र में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से अतिरिक्त $6.3 मिलियन की फंडिंग की भी घोषणा की है। वहीं स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई फेडरल मंत्री लिंडा बर्नी का कहना है कि सरकार ट्रूथ टेलिंग कमीशन के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्ष वॉइस टू पार्लियामेंट जनमत संग्रह की विफलता को इस उद्देश्य के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया था। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रूफस का कहना है कि नशीली दवाओं के तस्करों और आतंकवादियों को अपने अपराधों से लाभ कमाने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कानूनों को तत्काल अपडेट करने की आवश्यकता है। साथ ही वे जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर 2 राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन शुरू करने को तैयार हैं। बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष रूसी सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा उठाए जाने के बाद रूस ने रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कई भारतीयों को धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती करने का खुलासा हुआ था। ऐसे में दर्जनों भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए थे और कई भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में मोर्चे पर तैनात हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।